السلام علیکم.
وعلیکم السلام افشار.
ہاں بھائی میں ہوں، خود ہی ہوں.
ہم آپ کے تابے دار ہیں، ملاقات کے منتظر.
تکلف اور دوسری باتیں ایک طرف رکھو، یہ بتاؤ کہ نمبر کہاں سے ملا ہے میرا تمہیں؟
کیا فرق پڑتا ہے؟
فرق یہ ہے کہ میں کبھی بھی کسی پر کبھی بھی اعتماد نہیں کرتا، سمجھے؟
مجھے تو آپ سے کچھ لینا دینا نہیں ہے بھائی، مجھے صرف ہمایوں ناظر نیا کا پتہ چاہیے، جانتے ہو نا انہیں؟
نہیں، میں نے ان کا نام نہیں سنا آج تک.
چھوڑا یار، اب شاید تم لوگ اسے کسی اور نام سے پکارتے ہو گے. میں جانتا ہوں کہ وہ تمہارے بچپن کا دوست ہے.
میرا کوئی بچپن کا دوست نہیں ہے، میں اتنی جلدی کسی دوستی نہیں کرتا، سمجھے؟
جعلی ڈاکیومینٹس بنانے کام کرتا ہے، اب پہچانا؟
تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے بھائی، میں ایسا کسی آدمی کو نہیں جانتا، ایسے کسی بھی.
اچھا ٹھیک ہے یار، کہاں جا رہے ہو، ناراض کیوں ہوتے ہو؟ تمہارا نمبر نخا سے لیا ہے، اسے تو جانتے ہو نا تم.
نخا؟
وہی وکیل جو جس کے پاس ہمایوں کی بیٹی کا نام
مہران نخا.
یقین نہیں آ رہا ہے تو انہیں فون کر لو، میں خود ہی نمبر ملاتا ہوں.
نہیں یار نخا کو چھوڑو، یہ بتاؤ کہ تمہارے ہمایوں صاحب سے کیا کام ہے تم کو؟
ہمیں کوئی غیر قانونی کام نہیں ہے، بس ایک سند ہے، چاہتا ہوں ہمایوں اسے دیکھ کر بتائے کہ اصلی ہے یا نقلی ہے، تاکہ ہمیں دھوکہ نہ ہو. البتہ آپ کو بھی آپ کا حصہ ملے گا، یہ بھی یاد رکھنا.
مثلاً کتنا دینا؟
اب آپ ہمیں ہمایوں کا آتا پتا یا فون نمبر دے دیں، ہم بھی آپ کو خوش کر دیں گے.
5 لاکھ تومان لوں گا.
5 لاکھ تومان؟
ہاں، ورنہ میں نہیں بتا سکتا بھائی.
یار اتنے زیادہ مانگ رہے ہو، کیا ہمیں کسی خزانے پتا دے رہے ہو؟
بھائی لگتا ہے کہ آپ کو ڈالر اور دوسری چیزوں کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کا اندازہ نہیں ہے.
کیوں نہیں بھائی،
میں سستے میں سودا نہیں کرتا بھائی. ایڈریس چاہیے، 5 لاکھ مان دے دو فورا.
اچھا فروزان فر صاحب، اپنا سر ذرا آگے لائیے. خوش قسمتی سے آپ کے والد کی نظر 30% لوٹ آئی ہے. ٹھیک ہے، اپنا سر پیچھے لے جائیے. ایسا لگتا ہے کہ یہ ٹھیک ہونے کا پروسیس ابھی اور بھی چلے گا.
ڈاکٹر صاحب، مطلب میں دوبارہ دیکھ سکتا ہوں؟
شاید پہلے کی طرح صاف نہیں دیکھ سکے، لیکن میرے خیال میں کافی حد تک آپ کی نظر لوٹ آئے گی.
اچھا خدا کا شکر ہے.
یہ کیسے ہو سکتا ہے ڈاکٹر؟
علمی لحاظ سے اس کی کوئی وجہ واضح نہیں ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ کچھ عرصے کے لیے آپ کا نابینا ہونا شدید سٹریس اور آنکھوں کے نیورل ٹیشوز پر دباؤ کی وجہ سے تھا، جو آہستہ آہستہ کم ہو رہا ہے.
لیکن ڈاکٹر صاحب میں آپ کو ایک سائے کی طرح دیکھ رہا ہوں، آپ کا چہرہ صاف دکھائی نہیں دے رہا ہے.
شروع میں اتنا بھی اچھا ہے، بس اضطراب اور سٹریس سے بچنے کی کوشش کریں یا کہیں سفر پر چلے جائیں. آب و ہوا کی تبدیلی آپ کے جلد ٹھیک ہونے میں بہت ہی مددگار ثابت ہو سکتی ہے.
بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ،
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب.
کوئی بات نہیں.
بہزاد آ جاؤ، کھانا تیار ہے. بہزاد منوچہر آ جائیں، کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے. امی آپ تو شروع کریں.
آؤ بیٹھو بیٹا، آج کل بہت کم کھانا کھاتے ہو، کچھ کھا لو تاکہ جان آ جائے.
میں کیا کروں، مجھے بھوک ہی نہیں لگی.
کیا ہوا بہزاد، بیٹھو نا.
درحقیقت مجھے آپ لوگوں کو ایک بڑی اہم بات بتانی ہے.
خیر تو ہے، کیا ہوا ہے؟
اسی لڑکی کے بارے میں جس کے رشتے کے لیے ہم لوگ گئے تھے ارغوان.
मैं एक दफा कह चुकी हूँ कि इस लड़की का नाम दोबारा मेरे सामने मत लो और तुम ही उसे भूल जाओ। मैं तुम्हें इस फजूल मोहब्बत की खातिर अपनी जिंदगी खराब करने नहीं दूंगी।
अम्मी जान, मैं आपके नजरियात का एहतराम करता हूँ, लेकिन मैं खुद भी इतना अकिल और समझदार हूँ कि कोई फैसला कर सकूँ।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका, यानी हम तो इस बीच आलू गोभी हैं।
नहीं, आप लोग बुजुर्ग हैं, लेकिन मुझे अब किसी बड़े की जरूरत नहीं है, इसीलिए आपको सब कुछ साफ साफ बताने और जान छुड़ाने के लिए आया हूँ।
क्या बताना है तुम्हें?
यही कि मैं
ये के पागल हो चुका है, बकवास कर रहा है। अजीब आदमी हो तुम। हमने आपस में बात की, तय किया था इस मसले के मंतिकी हल निकालेंगे, क्या तय नहीं पाया था कि इसको हमेशा के लिए भूल जाओगे तुम?
हमारी बात तो ये साहब मानते ही नहीं। मनुचर तुम ही बात कर लो।
फिक्र मत कीजिए अम्मी जान, इस सरकश घोड़े को राम करना मेरा काम है, इसको राह रास्त पर लाना मैं जानता हूँ। उठो, क्यों अपनी माँ को परेशान कर रहे हो? एक मिनट के लिए आ जाओ, काम है तुमसे। अभी 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 हम आते हैं।
मुझे डर है कि ये लड़का अपने लिए कोई मुसीबत खड़ी न कर ले।
अम्मी, बहजाद और उस लड़की का मामला मजीद बिगड़ने से पहले हमें कुछ करना होगा। हाँ
ठीक है, खाना खा लो।
अंदर आओ, अंदर आओ, दरवाजा बंद करो।
क्या है मनुचर?
एक मिनट आओ अंदर।
मुझे बात क्यों नहीं करने देते?
क्या बात करना है? क्यों सब कुछ खराब कर रहे हो? क्यों उस लड़की को नहीं छोड़ रहे हो तुम? ये तमाशा क्या है? क्यों तमाशा लगा रखा है तुमने? ये
पहली बात तो ये कि इश्क तमाशा नहीं है, दूसरी ये कि वो लड़की मेरी मनकुहा है।
ठीक है, समझ रहे हो ना? बोलो मेरी मनकुहा। सुनो, अगर तुम्हारी मनकुहा भी है तो बहाने को ढूंढ रहे हो तुम, छोड़ क्यों नहीं देते?
बकवास मत करो, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा।
क्यों नहीं बेटा, वक्त आने पर करोगे।
मैं कहता हूँ ऐसा कभी नहीं करूंगा। मनुचर साहब, आप एक मेहरबानी करें, मेरी जाती जिंदगी में दखल ना दें।
एक मिनट ठहरो, अगरचे मेरा जाती तजुर्बा तो नहीं है, लेकिन लोगों को देखा है। मैंने पूरी जिंदगी कभी इश्क नहीं किया, लेकिन बहुत सारे आशिकों को मैंने देखा है, उनमें से कोई भी तुम्हारी तरह नहीं है। वो बोल्ड और बेबाक होते हैं, बगैर शर्माए अपने इश्क का ढिढोरा पीटते हैं, लेकिन मेरे भाई तुम डरपोक हो बेजात। तुम हत्ता किसी को अपनी शादी के बारे में बता भी नहीं पाए, किसी से कह भी नहीं पाए।
बकवास क्यों कर रहे हो? मैं भी वहां नीचे बोलने वाला था, मगर तुमने रोक दिया।
यार ऐसा बोलो, अब तो पानी सर से गुजर चुका।
अभी देर नहीं हुई है, अभी नीचे जाके तुम्हें अपनी जुर्रत दिखाता
हूं। एक मिनट बैठो तो सही, अब शेर बनने की जरूरत नहीं। जनाब तुमने सब कुछ खराब कर दिया है, अब मैं संभालता हूँ। तुम बस सर झुकाकर अपनी गलती मान लो।
गलती तो तुम कर रहे हो।
गलती तुमने की है बेजात, तुम जानते भी हो कि तुम्हारा काम गलत था। जानते हो तुम्हारा ऐप क्या है? तुम मुझे अपना दुश्मन समझते हो, सोचते हो कि मैं तुम्हारा बुरा चाहता हूँ। बेजार, खाली जेब वाले आशिक के हाथों कुछ नहीं आता। क्यों खुद को एक झूठे इश्क में बर्बाद कर रहे हो तुम?
जिस चीज का इल्म नहीं उसके बारे में बात मत किया करो।
मुझे पता नहीं, या तुम्हें जिसने शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सर छुपाया हुआ है।
कहना क्या चाहते हो?
मतलब ये कि कल मैं तुम्हें किसी से मिलवाने ले जाऊंगा और उसे देखकर तुम्हें जरूर झटका लगेगा।
किससे?
अरगवान के बाप से।
क्या?
बेजात, तुम्हारा ससुर जिंदा है, अरगवान ने तुमसे झूठ बोला है। उसने शुरू ही से तुमसे इतना बड़ा झूठ बोला है।
क्या मजाक कर रहे हो मनुचर? मैंने खुद उसका डेथ सर्टिफिकेट देखा
है। जाली था, उसका बाप ही जाली दस्तावेजात बनाता है। और क्या?
आ जाओ।
अबू नीचे नहीं आएंगे? अम्मी ने बहुत मजे का अखरोट का केक बनाया है आपके लिए।
ठीक है बेटी, तुम जाओ, मैं अभी आता हूँ।
अच्छा।
अल्लाह अकबर।
मेरे ख्याल में वही है। आओ उतरो।
तुम्हारा शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट तैयार है?
जी जरूर, कभी हमने हिसाब में कभी गड़बड़ी तो नहीं की ना?
ठीक है।
ओके।
सलाम अलैकुम मैम साहब, क्या हाल चाल है जनाब?
वालेकुम सलाम,
कैसे हैं आप?
अस्सलाम वालेकुम।
ये बेजाज साहब हैं, मैं मनु चेर हूँ। मैं अफशार साहब का दोस्त हूँ, कल आपको फोन करके बताया था ना?
हाँ
जी।
ठीक है, कहिए
जी। बात यह कि हमने आपके हाथ की सफाई और हुनर के बारे में बहुत कुछ सुना है। हमारे इस बेचारे दोस्त का एक काम फंसा हुआ है, इसलिए आपके पास आए हैं। हमें पता है कि आप ज़रूर इसका काम कर देंगे, हल कर देंगे इसे।
ठीक है, अंदर आओ, देखते हैं क्या कर सकता हूँ।
बहुत शुक्रिया जनाब, आइए। मैं तो कहता हूँ कि आपका काम वाकई बहुत मुश्किल है।
और क्या, जितना वक्त गुजरता जाता है हमारे पेशे में काम करना मजीद मुश्किल होता जा रहा है, इसलिए कि सब कुछ कंप्यूटराइज्ड हो गया है।
जी
बहुत शुक्रिया।
एयरपोर्ट के एंट्रेंस और एग्जिट गेट से लेकर सरहदी गुजरगाहों और हुकूमती इदारों तक, इसी वजह से कम ही लोग हैं कि जो जाली दस्तावेजात तैयार करने की हिम्मत करते हैं। और हमने भी अपने काम में आगे बढ़ने के लिए जवानों के बकौल खुद को अपडेट कर लिया है।
जनाब आजकल तो ऐसे ऐसे जाली डॉक्यूमेंट्स बन रहे हैं जो असल से बेहतर लगते हैं। यही चीन को आप ले लीजिए, जो चीज ऑर्डर करो बनाता है असली से बेहतर बना।
और नहीं तो क्या, नकली चीजें बनाने का मरकज तो चीन ही है और हम फजूल में बदनाम है। मुसलसल जाली चीजें बना रहा है कोई पूछने वाला नहीं, लेकिन हम एक जाली कागज बनाते हैं तो मुजरिम हो जाते हैं।
नहीं जनाब ऐसा नहीं है, वो लोग शायद क्वांटिटी में आगे हों लेकिन आपके काम की क्वालिटी ही कुछ और है। आप उस्तादों के उस्ताद हैं।
खैर इसे जाने दें, ये बताएं कि काम क्या है।
देखिए हम मायूस साहब, हमें ना शनाख्ती कार्ड चाहिए ना ही कोई और सनद और सर्टिफिकेट। काम सिर्फ इतना है कि आप हमारे साथ हमारे इस दोस्त के घर आएं, एक चीज को देख कर अच्छी तरह से बताएं।
क्या?
खुदाई के दौरान मिला हुआ एक नक्शा है।
इन चक्करों में ना पड़े, खुदाई के बाद या तो पुराने बर्तन निकल आते हैं या फिर पुरानी कब्र।
नहीं जी ऐसा नहीं है, वो हकीकत में कदीम नक्शा है, पामिनार की तरह पुराने घरों में से किसी को मिला है और वो उसे हमारे इस दोस्त को बेचना चाहता है, लेकिन हमने सोचा पहले किसी माहिर आदमी को दिखा दें ताकि धोखा ना हो।
मैं इस मामले में क्या कर सकता हूँ?
महारत चाहते हैं, हम चाहते हैं कि आप इस नक्शे को देख कर बताएं कि असली है या जाली। जितने पैसे चाहे मैं देने को तैयार हूँ।
आप लोग नक्शा यहाँ क्यों नहीं लाए, मैं देख लेता।
नक्शे को यहाँ लाना मुमकिन नहीं था ना।
क्यों नहीं हो सकता?
जनाब बिलफर्ज वो नक्शा आपको मिलता तो क्या इस कीमती नक्शे को हाथ में लिए किसी ऐसे फर्द के पास जाते हैं जिसे जानते ही नहीं कि ये वो कौन लोग हैं? क्या आप उन पर भरोसा कर सकते हैं?
मैं आप लोगों पर कैसे भरोसा कर सकता हूँ?
इसकी वजह यह है कि हमें जनाब अफशार साहब ने तो उन्हीं ने मुतारफ कराया है। दूसरा ये कि हमारे साहब आपका तो इसमें कुछ नहीं जाना, दो मिनट के लिए आप आएंगे, नक्शा देखेंगे असल हो या जाली हो, आप बता देंगे, अपना पैसा ले।
नहीं मुझे इस चक्कर में नहीं पड़ना है, आप किसी और के पास जाइए।
ये एडवांस रख लीजिए, अगर आपने काम किया तो इसका दुगना और मिलेगा।
लगता है बहुत ही कीमती चीज है जो आपने एडवांस में चेक दे दिया।
जनाब बता दिया कि खुदाई से मिला है।
अच्छा तो मानेंगे या इन पैसों को ठुकरा देंगे?
आप लोग चाहे तो पीजिए, ठंडी हो गई।
बहुत बहुत शुक्रिया, लो पियो।
माफ कीजिएगा मोहतरमा, किसी से कुछ काम था आपको?
सुरैया साहिबा, सलामुअलैकुम।
वालेकुम अस्सलाम।
मैं अरगवान हूँ, आज़रनिया।
हाँ, ठीक हो तुम?
बहुत शुक्रिया, माफ कीजिएगा आपको जहमत दी, मुझे आपकी वालदा से काम था। क्या घर में है?
सुबह जब मैं काम पर जाती हूँ तो या तो खरीदारी करने जाती हैं या अपनी सहेलियों के पास।
अच्छा, अगर बुरा ना माने तो मैं उनके लौटने का इंतजार कर सकती हूँ?
नहीं, कोई बात नहीं, आ जाओ, क्या मुश्किल की बात है।
बहुत शुक्रिया।
तशरीफ लाइए।
माफ कीजिएगा।
आप अंदर जाए।
हेलो, सलाम अलैकुम अबशार। हाँ, आए थे, चले गए। हाँ,
मेरी बात समझ में नहीं आई भाई। बैठ जाओ, बैठ जाओ।
दो खुद ही चला
दो, मैं चलाता हूँ। लाओ, बैठो तुम। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम।
कैसे हाल चाल हैं जनाब? हमें आप इनाम दीजिए, टेंडर हमने जीत लिया। काशा पाँ होते हो देखते कि कैसे रकबा से मैं सबकत ले गया, बेचारे देखते ही रह गए। अलबत्ता सच तो यह है कि इस कामयाबी में बहजाद का भी वाकई बड़ा हाथ रहा। अच्छा हुआ फैक्ट्री के लिए, ये बहुत अच्छा हुआ, बहुत फ़ायदे का काम हुआ है, अल्लाह का शुक्र है।
बात करते वक्त ठीक से बैठा करो, तुम्हारे जुराबों और पैरों की बू से मेरा दम घुट रहा है।
माफ़ कीजिएगा जी, इन जूतों में ये मसला है कि इनसे बू आती है।
और ये खिलौना भी जेब में रखो, बाहर निकल जाओ फिर बात करना।
जनाब, क्या आप मुझे देख रहे हैं?
और नहीं तो क्या। ये ड्रामेबाजी किस लिए है?
अरे खुदा का शुक्र है, मुबारक हो, कब से आप देखने लगे?
अरे
कसम से, जी करता है मुझे पर लग जाएं और फौरन जाके सबको खुशखबरी सुना दो, मैं बहुत खुश हूँ। सुरैया को फोन करता हूँ, मैं अभी जाता हूँ, जश्न का इंतजाम करूँगा।
बस बस, शोर मत मचाओ और ज्यादा ज्यादा चापलूसी मत करो। तुम जैसे लोगों पर अगर नजर रखी जाए तो सरकश हो जाते हैं। मुझे तुम्हें फैक्ट्री से निकाल देना चाहिए था पहले ही।
मैं आपका गुलाम हूँ जनाब, आपका बड़ा पन है, आपकी आला जरफी है, आप अपनी बुजुर्गी से मुझे माफ कर दीजिए। खुदा के लिए, टेंडर की नीलामी में जमीन पर इतने पैर पटके हैं कि दर्द हो रहा है, मैंने सोचा जरा मोजे उतार कर।
तुम्हारी किस्मत अच्छी है, आज मैं बहुत खुश हूँ।
खुदा का शुक्र।
किसी को भेज कर मिठाई मंगवाओ और सब में बंटवाओ। जाओ देखो क्या।
ठीक है जनाब, आप एक बार मुस्कुरा दे, मैं खुद हलवाई को यहाँ हाजिर कर दूंगा। मिसेज अहमदी।
कहाँ?
जी फरमाइए।
अपने बदबूदार जुराब और जूते उठा कर ले जाओ।
अरे गए, एक मिनट रुके रुके, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। मिसेज अहमदी, अरे खुशखबरी मिसेज अहमदी, साहब की बिनाई लौट आई है।
अरे हमें जश्न मनाना
है। नहीं नहीं मोहतरमा, इस वक्त साहब को डिस्टर्ब ना करें, उनको आराम की जरूरत है।
बहुत मुबारक हो,
बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।
लीजिए।
शुक्रिया।
कोई बात नहीं। अपने आने की वजह नहीं बताएंगी हमें?
आपकी वालदा तशरीफ लाएं तो अर्ज करती हूँ।
जी बहुत शुक्रिया, आप लीजिए ना। माफ़ कीजिएगा आज़रनिया साहिबा, लेकिन मैं ये कहना तो नहीं चाह रही, लेकिन मुझे कहना पड़ेगा कि अगर आप उसी बारे में बात करने आई हैं तो हमारे नज़दीक तो ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है, हम इस बारे में मज़ीद सोचना भी नहीं चाहते।
जानती हूँ, लेकिन बात
एक मिनट, लगता है अम्मी आ गई हैं, माफ़ कीजिएगा, मैं अभी आई।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम अरगान, तुम कहाँ हो?
मैं तुम्हारे घर पे।
वहाँ क्या करने गई हो?
बहजाद, तुम्हारी मोहलत खत्म हो चुकी है, मैं खुद ही सब कुछ बताने आई हूँ।
बता दिया?
अभी नहीं, मैं तुम्हारी अम्मी के इंतजार कर रही थी, अभी आई हैं।
अरगान, अभी इसी वक्त उस घर से निकलकर बाहर आ जाओ, समझी?
बेसात सुनो, मेहरबानी करो मुझे बताने की इजाजत दो प्लीज।
अरगमान, खुदा की कसम अगर तुमने अपने मुंह से एक लफ्ज भी निकाला तो दोबारा मुझे फिर कभी नहीं देख पाओगी, मैं हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी से निकल जाऊंगा।
क्या मतलब?
यही कि अभी बताना ठीक नहीं है।
और हाँ, शाम
को घर आ जाओ, मुझे तुमसे जरूरी काम है, समझी? खुदा हाफिज।
हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम महदू साहिबा।
वालेकुम सलाम, तुमको मुझसे कोई काम था?
जी, लेकिन ज़्यादा अहम काम नहीं था।
लेकिन क्या तुम मेरी वालदा से बात करने नहीं आई थी?
क्यों नहीं, वो फरूजान फर साहब के साथ वकालत की फीस का मामूली सा हिसाब किताब था, मगर वो भी फ़ोन पर हल हो गया, आपका वक्त नहीं लूँगी, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।
खुदा हाफिज़।
ये इस घर में हो क्या रहा है?
अम्मी, दाल में कुछ काला लगता है, लगता है इन दोनों के बीच कुछ चल रहा है जो हमें नहीं मालूम।
किसे फोन कर रही हो?
बहजाद को। ओहो, जवाब भी नहीं दे रहा है।
इंजीनियर फरोजान फर,
क्या हाल है? इस रास में सेटो, कैसे हो?
क्या हो रहा है?
क्या हो, क्यों परेशान क्यों?
अरगान, मुझे बताए बगैर घर पहुंच गई।
वाह वाह, अब इसका जादू नहीं उतरा है वैजा साहब, हमारी बदकिस्मती जमीन व आसमान से बरस रही है बदकिस्मती।
और क्या क्या?
तुम्हारे चचा की नजर लौट आई है।
क्या?
उसको नजर आने लगा है मेरे भाई।
ये तो बहुत अच्छा है। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह।
अच्छा है, लेकिन कहाँ अच्छा है और कहाँ बुरा है, यानी इसके बाद और ज्यादा हसास हो जाएंगे, तुम्हारी हर हरकत पर नजर रखेंगे। क्या पता अभी इस वक्त भी सीसीटीवी समेत देख रहे हो कि हम क्या कर रहे हैं। कसम से मैं तो बहुत खुश हूँ, तुम भी जल्दी भाग के जाओ और चचा जान को मुबारकबाद दो। मैं तो बहुत खुश हूँ, बहुत बहुत खुश हूँ। हेलो कासिम साहब, सलाम अलैकुम।
हेलो
हेलो सुरैया, खुशखबरी है, तुम्हारे चचा की आंखें ठीक हो गई हैं।
सच कह रहे हो?
हाँ, उनकी नजर टेलीस्कोप की तरह तेज हो गई है, बिल्कुल।
खुदा का शुक्र है, अम्मी सुनेंगी तो बहुत खुश हो जाएंगी, खुदा का बहुत
जल्दी करो, अम्मी से कहो फोन करके मुबारकबाद दे।
हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी बताती हूँ मैं जाकर। मनोजर, क्या तुम जानते हो कि ये लड़की अरगवान का बहजाद से क्या चक्कर है?
अरगवान? अरगवान कौन है?
वही लड़की जिसका रिश्ता मांगने गए थे, बहजाद की पुरानी वकील का कह रही हूँ। अरे, यहाँ आई थी, कह रही थी बहजाद की तरफ कुछ हिसाब किताब बाकी है उसका, और अजीब सी बातें कर रही थी।
क्या आप भी वही हैं?
नहीं, पता नहीं क्या हुआ कि अचानक उठकर चली गई, मैंने सोचा शायद तुम्हें इस मसले का पता हो।
नहीं, मुझे क्या पता, जरूर उस केस के सिलसिले में कुछ काम होगा।
मनोजहर, देखो अगर कोई मसला है तो मुझे बता दो, कल कोई लड़की हमारे लिए कई नई मुसीबत ना बन जाए। हाँ,
अरे सुरैया, मुझे तो जिस बात का इल्म हो पहले मैं तुम्हें बताता हूँ। अच्छा, मुझे बहुत काम है, मैं वर्कशॉप जा रहा हूँ, फोन करना मत भूलना मुबारकबाद के लिए, समझी? सुरैया से बात कर रहा था।
अच्छा, खुदा
का शुक्र है कोई लड़की वहाँ से जा चुकी है, और ऐसी कोई बात भी नहीं थी जिससे उनको शक हो जाए, मैं भी अनजान बना रहा।
ठीक है, जल्दी बैठा, मैं जल्द से जल्द पहुँचना है।
السلام علیکم.
السلام علیکم.
آپ کب واپس آئے؟
آج صبح ہی. مزید صبر نہیں کر سکا, میں آپ سے ضروری بات کرنے آیا ہوں.
یہاں ٹھیک نہیں رہے گا, اگر برا نہ مانے تو نیچے جا کے بات کر لیں.
ٹھیک ہے, چلیے.
معاف کیجیے گا ڈاکٹر صاحب, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ کیوں اتنی دور سے تشریف لائے ہیں. میں نے اپنا ارادہ تو فون پر آپ کو بتا دیا تھا.
ہاں, مجھے ٹالنے کے لیے آپ نے ایک الٹا سیدھا جواب دیا تھا.
دیکھیے ڈاکٹر صاحب, آپ تعلیم یافتہ انسان ہیں اور ضرور جانتے ہیں کہ ہر انسان کو انتخاب کا حق حاصل ہے.
جی ضرور ایسا ہی ہے, لیکن اس شرط پر کہ اس کے انتخاب کرنے کا حق کسی دوسرے کی توہین کا سبب نہ بنے. آپ نے ایسا کر کے میری اور میرے خاندان کی توہین کی ہے, میرے جذبات سے کھیلا ہے.
ڈاکٹر صاحب, آپ ایک محترم اور منطقی آدمی ہیں. ہم نے تو کوئی وعدہ نہیں کیا تھا, بلکہ طے پایا تھا کہ کچھ عرصے دور سے رابطہ رکھے تاکہ ایک دوسرے کے مزاج کے ساتھ واقف ہو جائیں اور اس کے بعد کوئی فیصلہ لیں.
فروزانفر صاحبہ, جھوٹ اور دوسروں کو ذمہ دار ٹھہرانے سے حقیقت چھپانے کی کوشش نہ کرے. آپ نے میرے ساتھ ایک کھلونے کی طرح کھیلا ہے. میں آپ کے لیے ایک پل اور ایک وسیلے کی طرح تھا. میں آپ کے لیے آپ کا ماضی بلانے کا ایک ذریعہ اور ایک وسیلہ تھا.
معاف کیجیے گا, مجھے آپ کے اس شک کی وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے ڈاکٹر صاحب.
اس کی وجہ وہ جھوٹ ہے جو آپ نے مجھ سے بولا ہے.
میں نے آپ سے کوئی جھوٹ نہیں کہا ہے.
کیوں نہیں کہا ہے؟ پہلی دفعہ ہمارے ملنے پہ آپ نے کہا تھا کہ آپ کی زندگی میں کوئی نہیں ہے.
کیونکہ میری زندگی میں کوئی بھی نہیں ہے.
کیوں نہیں ہے؟ آپ کے چچا کا بیٹا بہزاد.
میرے اور بہزاد کے بیچ میں کچھ بھی نہیں ہے.
تو میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہیں کہ اس آدمی کے لیے آپ کے دل میں کوئی احساس نہیں ہے. آپ سے کہہ رہا ہوں محترمہ, میری طرف دیکھ کر بتائیں تاکہ مجھے آپ کی بات کا یقین ہو جائے. میں کئی سال بعد کسی ایسی لڑکی سے شادی کرنے ایران آیا ہوں کہ پردیس اور غربت میں میرا ساتھ نبھائے, ایسا جو صداقت کو سمجھے اور لوگوں کے لیے احترام کا قائل ہو. میں لوٹ کر چلا جاؤں گا اور آج کے بعد کبھی آپ کو پریشان نہیں کروں گا, لیکن جان لو کہ آپ کبھی سکی نہیں رہیں گی. لیکن یقین رکھیے, مجھ پر کیے ہوئے ظلم کا حساب آپ کو چکانا پڑے گا.
بات بہت پرانی ہے, میرا ملٹری سروس کا کارڈ 2-3 سال بعد ہی گم ہو گیا تھا اور میں نے بھی ڈپلیکیٹ وغیرہ کی جھنجھٹ
نہیں. حاضر میاں صاحب, کسی چیز کی کمی تو نہیں ہے؟
بڑی مہربانی,
چائے ابھی تیار ہو رہی ہے, میں لے کے آتا ہوں.
بہت شکریہ.
واہ واہ شکریہ بہزاد صاحب. آئیے جناب, آئیے, یہ لیجیے.
جانتے ہو
جی
فوجی ٹریننگ کا تصدیقی کارڈ
ہاں, کیوں نہیں رہی ہو؟
جیسا آپ سمجھ رہے ہیں اتنا آسان نہیں.
نہیں یار, اتنا آسان تو نہیں, ہر کوئی نہیں کر سکتا. بہزاد ذرا نمک دینا. تو
نمک دان
ایسا تو نہیں ہے نا,
خصوصاً اب جب کہ کمپیوٹرائز بھی ہو چکا ہے. پتا نہیں کوئی ان کو اتنا کہنے والا نہیں ہے کہ لوگوں کے دستاویزات میں اتنے کیڑے کیوں نکالتے ہو.
ان کا کام یہی ہے جناب, ایسا کرنے سے آپ جیسے ایک استاد کا کام خراب کرنا چاہتے ہیں وہ. بہت بہت شکریہ. یہ لیجیے کیلا, کیلا کھاؤ نا.
یہ کام شطرنج کی بازی کی طرح ہے.
واہ
ممکن ہے آپ کو خبردار کر دے, لیکن شکست سے بچنے کے لیے ہمیشہ ایک راستہ ہونا چاہیے جس سے آپ نکل سکیں.
جی
کیا ہوا انجینئر صاحب؟
بات ہوئی ہے, راستے میں ہیں,
مجھے اور بھی بہت سے کام کرنے ہیں.
جی ہاں بالکل, معاف کیجیے.
آ رہا ہے. شکریہ بہزاد, شکریہ.
کوئی بات نہیں, لیجیے
جناب, چائے پیجیے, ٹھنڈی ہو رہی ہے.
ٹھیک ہے,
لگتا ہے آ گئے. اوپر آ جاؤ.
دیکھیے
میں نے کہا اوپر آؤ, مجھے کام ہے.
کئی مرتبہ
جب تک اس سلسلے کا حل نہیں نکلتا تب تک میں اس گھر میں نہیں آؤں گی.
کیا مطلب, کیوں نخرے کر رہی ہو؟ میں کہتا ہوں اوپر آ جاؤ.
نہیں آتی, تم دروازے پہ آؤ.
اتنی آسانی نہیں.
معاف کیجیے گا, میں ذرا نیچے جا کے واپس آتا ہوں.
ٹھیک ہے, لیکن جلدی واپس آنا کیونکہ مجھے بہت کام ہے.
نخرے کیوں کر رہی ہو؟ میں تمہیں بلا رہا ہوں، اوپر نہیں آ رہی ہو؟
چلو چلیں بہزاد.
کہاں؟
تمہاری امی کے گھر. میں تھک چکی ہوں، مزید برداشت نہیں کر سکتی. یا تو آج ہی یہ مسئلہ حل ہو جانا چاہیے یا میں ساتھ چھوڑ دوں گی.
ٹھیک ہے، اوپر آؤ، چلتے ہیں، آج سب کچھ واضح ہو جائے گا.
معاف کرنا ہاں، میں ایسی وہاں چلی گئی، یقین مانو میرے اختیار میں نہیں تھا. اب تو اتنے زیادہ جھوٹ اور چھپانے سے میری طبیعت خراب ہو رہی ہے.
یعنی تم نے مجھ سے آج تک کوئی جھوٹ نہیں بولا؟
نہیں، کبھی نہیں. معلوم ہے کہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں کہا.
ٹھیک ہے، تو اوپر چلتے ہیں، اس کے بعد جہاں تم کہو گے میں چلوں گا. چلو.
کدوم خواستن، کدوم جنون، کدوم عشق؟ شاید خیلی از این حرفا دروغه. تا وقتی با همین از عشق میگیم نباشیم قولمون حتی دروغه. از این عشقایی که زنجیر میشه، هوس‌هایی که دامنگیر میشه، میترسم چون دلم بی‌اعتماده به احساسی که بی‌تأثیر میشه.